शाप होने के कारण युद्ध चलता रहा। जब देवता असुरों की चाल से प्रायः हार गए और अत्यंत उद्विग्न हो गए, तब भगवान विष्णु उन सब के बीच प्रकट हुए। देवता तथा असुर दोनों ही माया संबंधी कार्यकलाप में निपुण होते हैं, लेकिन देवता भगवत भक्त है, जबकि असुर उनके सर्वथा विपरीत है। देवताओं तथा असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए क्षीर सागर का मंथन किया, किंतु असुर भगवत भक्त न होने के कारण इससे कोई लाभ प्राप्त न कर सके। देवताओं को अमृत पिलाकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आसीन होकर अपने धाम वापस चले गए, किंतु अत्यंत दुखी होने के कारण असुरों ने पुनः देवताओं के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। विरोचन के पुत्र बलि महाराज असुरों के सेनापति बने। युद्ध के प्रारंभ में देवताओं ने असुरों को हराने की तैयारी की। स्वर्ग के राजा इंद्र ने बलि से और वायु अग्नि वरुण इत्यादि देवताओं ने अन्य असुर नायकों से युद्ध किया। इस युद्ध में असुर पराजित हुए। मृत्यु से बचने के लिए उन्होंने तरह तरह की भौतिक युक्तियों से देवताओं के पक्ष के सैनिकों को मारकर मायाजाल फैलाना शुरू किया। देवताओं ने अन्य कोई रास्ता ना देखकर, लेकिन कि बीच में अभी जो पहला युद्ध चल रहा है ना, देवताओं ने अन्य कोई रास्ता ना देखकर पुनः भगवान विष्णु की शरण ली। तब उन्होंने प्रकट होकर असुरों के सारे मायाजाल को छिन्न भिन्न कर डाला। असुरों के जिन वीरों ने भगवान से युद्ध किया उनमें कालनेमी, माली, सुमाली तथा माल्यवान मुख्य थे। ये सभी भगवान द्वारा मारे गए। इस तरह देवता सारे संकटों से मुक्त हो गए। ये अमृत पीने के बाद की बात है ना,
अमृत पी के वापस चले गए,
दोबारा उमर रहे थे असुरों के द्वारा। लीजिए क्या इसका सिर्फ समरी पढ़ना है?
ऐसा ही बोला था, पूरे दिन पहले सबका समरी पढ़ लेना, फिर वो वाला चैप्टर पूरा पढ़ लेना।
अच्छा अच्छा,
सात आठ टेन से
तो ये चैप्टर का नाम क्या था?
देवता देवता और
युद्ध, देवता और
बैटल बैटल में टाइम होने हैं।
ये अध्याय 11। इंद्र द्वारा असुरों का संहार। अब इंद्र असुरों का संहार करेंगे। इस अध्याय में बताया गया है कि महान मुनि नारद को उन असुरों पर अत्यधिक दया आई जो देवताओं के द्वारा मारे गए। देखो भक्त को दोनों के ऊपर दया है, नहीं भगवान ने मरवाया असुरों को, लेकिन नारद मुनि को दया आ रहा। अतः उन्होंने देवताओं को इस रक्तपात को बंद करने के लिए कहा। तब शुक्राचार्य ने अपनी योग शक्ति से सभी असुरों को जीवनदान दिया। भगवान का समर्थन प्राप्त होने से देवतागण इन असुरों से नए जोश से पुनः लड़ने लगे। राजा इंद्र ने बलि पर अपना वज्र चलाया और जब बलि गिर गए तब उनके मित्र जंभासुर ने इंद्र पर आक्रमण कर दिया, किंतु इंद्र ने अपने वज्र से उनका सिर काट दिया। इससे पता चलता है कि भगवान जो है रक्षा करने के लिए भी शक्ति देते हैं और नाश करने के लिए शक्ति देते हैं। नाश हो रहे कर रहे इंद्र अभी संहार कर रहे। जब नारद मुनि ने सुना कि जंभासुर मारा गया तो उन्होंने नमुची बल तथा पाक को सूचित किया जो उसके संबंधी थे।
तब ये तीनों युद्ध क्षेत्र में गए और इन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। इंद्र ने बल तथा पाक के सिर काट दिए और नमुची के कंधे पर कुलिश नाम का वज्र रूपी हथियार छोड़ा। मतलब वज्र भी अनेक है, कुलिश नाम के वज्र छोड़े, किंतु यह कुलिश वज्र असफल होकर वापस आ गया, जिससे इंद्र खिन्न हो गए। खिन्न मतलब नाराज होना है, मोरोस। उस समय आकाश से एक अदृश्य वाणी सुनाई पड़ी। वाणी ने घोषणा की, नमुची को शुष्क या नमः हथियार नहीं मार सकता। शुष्क मतलब सुकान, जो सुखाने वाला हो, और नमः मतलब गीला। अच्छा, ना सूखा हुआ ना गीला अस्त्र मार सकते हैं, बताओ। अस्त्र का इस ये भी विभाग होता है, शुष्क हथियार और गीला हथियार। ये वाणी सुनकर इंद्र सोचने लगे कि नमुची का संहार कैसे हो। तब उसके मन में झाग का विचार आया, जो ना तो शुष्क होता है ना नमः। ये झाग के हथियार का उपयोग करके वह नमुची को मारने में सफल रहे। इस प्रकार इंद्र तथा अन्य देवताओं ने अनेक असुर मार गिराए। तब ब्रह्मा के आग्रह पर नारद मुनि देवताओं के पास गए और उन्हें मना किया कि अब वे असुरों का वध करना बंद कर दे। तब सारे देवता अपने अपने धामों को चले गए, किंतु युद्ध स्थल पर जितने असुर जीवित बचे थे वे सब नारद के आदेश अनुसार बलि महाराज को अस्ताचल पर्वत पर ले गए, जहाँ पर शुक्राचार्य के कर स्पर्श से बलि महाराज को फिर से चेतना आ गई और जिन असुरों के सिर तथा शरीर पूरी तरह नष्ट नहीं हुए थे उन सब को शुक्राचार्य ने अपने योग शक्ति से पुनः जीवित कर दिया।
मोहिनी मूर्ति अवतार पर शिव जी को का मोहित होना,
ये पूरा पढ़ना है।
इस अध्याय में वर्णन हुआ है कि किस तरह भगवान के सुंदर मोहिनी मूर्ति अवतार को देखकर शिव जी मोहित हो गए और बाद में किस तरह उन्हें होश आया। जब शिव जी ने आकर्षक स्त्री मोहिनी रूपी भगवान हरि की लीलाओं के विषय में सुना तो अपने बैल पर सवार होकर भगवान को देखने चल पड़े। वे अपनी पत्नी उमा तथा उनके सेवक भूतगणों के साथ भगवान के चरण कमलों के पास जा पहुँचे। उन्होंने सर्वव्यापी विराट रूप सृष्टि के परम नियत्ता परमात्मा सर्वों के आश्रय और पूर्ण स्वतंत्र सर्वाकरण सर्वकारणम भगवान को नमस्कार किया। इस प्रकार उन्होंने भगवान का सही सही वर्णन करते हुए उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उन्होंने अपनी इच्छा अभिव्यक्त की। भगवान अपने भक्तों पर बड़े दयालु होते हैं, अतः अपने भक्त शिव जी की इच्छा पूर्ति के लिए उन्होंने अपनी शक्ति का विस्तार किया और अपने आप को एक अत्यंत सुंदर एवं मोहक स्त्री के रूप में प्रकट किया। इस रूप को देखकर शिव जी भी मोहित हो गए। बाद में भगवत कृपा से वे अपने आप को नियंत्रित कर सके। इससे यह प्रदर्शित होता है कि जगत में भगवान की माया शक्ति से इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति स्त्री के रूप पर मोहित होता है, किंतु पुनः भगवत कृपा से वह माया के प्रभाव को जीत सकता है। यह भगवान के सर्वोच्च भक्त शिव जी से प्रकट हो गया। पहले तो वे मोहित हो गए, किंतु बाद में भगवत कृपा से उन्होंने अपने को रोका। इस संबंध में यह घोषित किया जाता है,
थोड़ा थोड़ा आगे आगे आ जाओ, बहुत पीछे हो गए, आगे आ जाओ गुरु जी, आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ।
इस संबंध में यह घोषित किया जाता है कि केवल शुद्ध भक्ति
आप लोगों ने गुरु
को लगा दिया, आपको माया के आकर्षक स्वरूप से दूर रख सकता है। क्या गुरु
जी, इधर आ जाओ ना, इधर आ जाओ, आगे आ जाएंगे। कितने पीछे है दादा साहब, इधर आ जाओ ना, विनम्र भक्त सारे आगे आ जाए। इधर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ।
इस संबंध में घोषित किया जाता है कि केवल शुद्ध भक्ति अपने आप को भगवान के आकर्षक स्वरूप से दूर रख सकता है, अन्यथा एक बार जीव माया के बाह्य स्वरूप के द्वारा बंदी हुआ नहीं कि वह उससे कभी छूट नहीं पाता। जब भगवान ने शिव जी पर कृपा की तो उन्होंने अपनी पत्नी भवानी तथा उसके साथी प्रेतों सहित भगवान की प्रदक्षिणा की और फिर अपने धाम को चले गए। सुखदेव गोस्वामी इस अध्याय का समापन उत्तम श्लोक भगवान के दिव्य गुणों के वर्णन एवं घोषणा के साथ करते हैं कि मनुष्य नवला भक्ति द्वारा भगवान की महिमा का गायन कर सकता है। इसका शुभारंभ स्वर्णम कीर्तनम से होता है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, स्त्री के रूप में भगवान हरि ने दानवों को मोह लिया और देवताओं को अमृत पिलाया। इन लीलाओं को सुनकर बैल पर सवारी करने वाले शिवजी उस स्थान पर गए जहाँ भगवान मधुसूदन रहते हैं। शिवजी अपनी पत्नी उमा को साथ लेकर तथा उनसे अपने सभी प्रेतों से घिरकर वहाँ भगवान के स्त्री रूप को देखने गए। भगवान ने शिवजी तथा उमा का अत्यंत सम्मान के साथ स्वागत किया और ठीक प्रकार से बैठ जाने पर शिवजी ने भगवान की विधिवत पूजा की और मुस्कुराते हुए वे इस प्रकार बोले। महादेव जी ने कहा, हे देवताओं में प्रमुख देव, हे सर्वव्यापी ब्रह्मांड के स्वामी, आपने अपनी शक्ति से अपने को सृष्टि में रूपांतरित कर दिया है। आप हर वस्तु के मूल एवं सक्षम कारण हैं। आप भौतिक नहीं हैं, निसंदेह आप हर एक की परम संजीवनी शक्ति या परमात्मा हैं, अतएव आप परमेश्वर हैं, अर्थात सभी नियंत्रकों के परम नियंत्रक हैं। पांचवा, हे भगवान, व्यक्त अव्यक्त मिथ्या अहंकार तथा इस दृश्य जगत का आदि उत्पत्ति पालन और संहार सभी कुछ आपसे है, किंतु आप परम सत्य परमात्मा परम ब्रह्म हैं। अतः जन्म मृत्यु तथा पालन जैसे परिवर्तन आप में नहीं पाए जाते। सिक्स, जो शुद्ध भक्त या महान संत पुरुष मुनिगण जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने के इच्छुक हैं तथा इंद्रिय तृप्ति की समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हैं, वे आपके चरण कमलों की निरंतर भक्ति में लगे रहते हैं। सेवन, हे प्रभु, आप परब्रह्म तथा सभी प्रकार से पूर्ण हैं। पूर्णता आध्यात्मिक होने के कारण आप नित्य प्रगति के भौतिक गुणों से मुक्त तथा दिव्य आनंद से पूरित हैं। निसंदेह आपके लिए शोक करने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि आप समस्त कारणों के परम कारण हैं। अतः आपके बिना कोई भी अस्तित्व में नहीं रह सकता। फिर भी जहाँ तक कारण और कार्य का संबंध है, हम आपसे भिन्न हैं, क्योंकि एक दृष्टि से कार्य तथा कारण पृथक पृथक हैं। आप सृष्टि पालन तथा श्रृंगार के मूल कारण हैं और समस्त जीवों को वर देते हैं। हर व्यक्ति अपने कार्यों के फलों के लिए आप पर निर्भर है, किंतु आप सर्वदा स्वतंत्र हैं। हे प्रभु, आप अकेले ही कार्य भी हैं तथा कारण भी हैं, अतएव आप दो प्रतीत होते हुए भी परम पूर्ण एक हैं। जिस तरह आभूषण के सोने तथा खान के सोने में बहुत अंतर नहीं होता, उसी तरह कारण तथा कार्य में अंतर नहीं होता, दोनों ही एक हैं। अज्ञान के कारण ही लोग अंतर तथा द्वैत गढ़ते हैं। आप भौतिक कलमश से मुक्त हैं, और चूंकि संपूर्ण ब्रह्मांड आपके द्वारा उत्पन्न है और आपके बिना विद्यमान नहीं रह सकता, अतः ये आपके दिव्य गुणों का प्रभाव है। इस प्रकार इस अवधारणा को माना नहीं जा सकता कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या। अपनाए। जो निर्विशेष मायावादी कहलाते हैं वे आपको निर्विशेष ब्रह्म के रूप में मानते हैं। दूसरे जो मीमांसक विचारक हैं आपको धर्म के रूप में मानते हैं। सांख्य दार्शनिक आपको ऐसा परम पुरुष मानते हैं जो प्रकृति तथा पुरुष के परे है और देवताओं का भी नियंत्रक है। जो लोग पंचरात नामक भक्ति के नियमों के अनुयायी हैं वे आपको नौ शक्तियों से युक्त मानते हैं तथा पंतजलि मुनि के अनुयायी जो पंतजल दार्शनिक कहलाते हैं आपको परम स्वतंत्र भगवान के रूप में मानते हैं जिसके ना तो कोई तुल्य है और ना कोई श्रेष्ठ है। हे प्रभु, सभी देवताओं में श्रेष्ठ माना जाने वाला मैं ब्रह्मा जी तथा मरीचि इत्यादि महर्षि सत्वगुण में उत्पन्न हैं, तब भी हम सभी आपकी माया से मोहग्रस्त हैं और यह नहीं समझ पाते कि यह सृष्टि क्या है। हमारी बात छोड़ भी दें तो उन असुरों तथा मनुष्यों के बारे में क्या कहा जाए जो प्रकृति के निम्न गुणों रजो तथा तमो गुणों से युक्त हैं। वे आपको कैसे जान सकते हैं? हे प्रभु, आप साक्षात परम ज्ञान हैं। आप इस सृष्टि तथा इसके सृजन पालन तथा संहार के विषय में सब कुछ जानते हैं। आप जीवों द्वारा किए जाने वाले उन सारे प्रयासों से अवगत हैं जिनके द्वारा वे इस भौतिक जगत से बनते हैं या मुक्त होते हैं। इस प्रकार वायु विस्तरणीय आकाश के साथ साथ समस्त चराचर प्राणियों में प्रविष्ट करती है। उसी प्रकार आप सर्वत्र विद्यमान हैं, अतएव सर्वज्ञ हैं। 12. हे प्रभु, मैंने आपके उन सभी अवतारों का वर्णन किया है जिन्हें आप अपने दिव्य गुणों के द्वारा प्रकट कर चुके हैं। अब जबकि आप एक सुंदर युवा स्त्री के रूप में प्रकट हुए हैं, मैं आपके उसी स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ।
भगवान, हम लोग यहाँ पर आपके उस रूप का दर्शन करने आए हैं जिसे आपने असुरों को पूर्णतया मोहित करने के लिए दिखलाया था और इस प्रकार देवताओं को अमृत पान करने दिया था। मैं उस रूप को देखने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब त्रिशूलधारी शिवजी ने भगवान विष्णु से इस तरह प्रार्थना की तो वह गंभीर होकर हंस पड़े और उन्होंने उनको इस प्रकार से उत्तर दिया। भगवान ने कहा, जब असुरों ने अमृत घट छीन लिया तो मैंने उन्हें प्रत्यक्ष छलावा देकर मोहित करने के उद्देश्य से और इस तरह देवताओं के हित में कार्य करने के लिए एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया
करने के लिए।
हे देवश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें अपना वह रूप दिखाऊंगा जो कामी पुरुषों द्वारा अत्यधिक सराहा जाता है। क्योंकि तुम मेरा वैसा रूप देखना चाहते हो, अतएव मैं तुम्हारे समक्ष उसे प्रकट करूंगा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ऐसा कहकर भगवान विष्णु तुरंत ही अंतर्धान हो गए और शिव जी उमा सहित वहीं पर चारों ओर आंखें घुमाते उन्हें ढूंढते रह गए।
अब देखना आगे क्या-क्या होता है शिव जी के साथ।
तत्पश्चात शिव जी ने लाल गुलाबी पत्तियों तथा विविध प्रकार के फूलों से भरे निकट के एक रमणीक जंगल में एक सुंदर स्त्री को गेंद से खेलते देखा। उसके कूल्हे एक चमचमाती साड़ी से ढके थे तथा कर धनी से सुशोभित थे।
इसमें जब वो शिव जी जैसे वो हो जाते हैं, जैसे भगवान विष्णु से बोल के गायब हो जाते हैं, तो शिव जी को लगता है कहाँ गए, मुझे थक लिया क्या, इनको ऐसे लगना है। वैसे देखते देखते वो देखते इस तरह से ना बगल में देखते हैं कि इस तरह से एक जगह था जहाँ पे अभी वर्णन किया।
चूंकि गेंद ऊपर तथा नीचे उछल रही थी, अतः वह जब उससे खेलती तो उसके अस्तन हिलते थे और जब वह अपने मूंगों जैसे लाल मुलायम पांवों से इधर उधर चलती तो उन अस्तनों पर भारी बोझ से तथा फूलों की भारी माला से उसकी कमर प्रत्येक पग पर टूटती हुई प्रतीत हो रही थी। उस स्त्री का मुखमंडल चौड़ा तथा सुंदर था और चंचल आँखों से सुशोभित था और वह आँखों
उसके हाथों द्वारा उछाली गई गेंद के साथ इधर उधर घूम रही थी। उसके कानों के दो जगमगाते कुंडल उसके चमकते गालों पर सांवली छाया की तरह सुशोभित हो रहे थे और उसके मुख पर बिखरे बाल उसे देखने में और भी सुंदर बना रहे थे। जब वह गेंद खेलती तो उसके शरीर को ढके रखने वाली साड़ी ढीली पड़ जाती और उसके बाल बिखर जाते। वह अपने सुंदर बाएं हाथ से अपने बालों को बांधने का प्रयास करती और साथ ही दाएं हाथ से गेंद को मारकर खेलती जा रही थी। यह इतना आकर्षक दृश्य था कि भगवान ने अपनी अंतरंगा शक्ति से इस तरह हर एक को मोह लिया। कुछ बोल रहे
थे? और ये जो उनके पार्षद थे ना, शिव जी के पार्षद थे, उनको तो पता था भगवान विष्णु, लेकिन शिव जी मोहित हो गए उनके पार्षदों को। अब शिव जी कुछ बोलेंगे सुनता।
जब शिव जी ने इस सुंदर स्त्री को गेंद खेलते हुए देख रहे थे तब वह कभी इन पर दृष्टि डालती और लजाकर थोड़ा सा हंस देती। ज्यों ही शिव जी ने उस सुंदर स्त्री को देखा और उसने इन्हें ताका, त्यों ही वह स्वयं को तथा अपनी सर्व सुंदर पत्नी उमा और अपने निकटस्थ पार्षदों को भूल गए। जब गेंद उसके हाथ से उछलकर दूर जा गिरी तो वह स्त्री उसका पीछा करने लगी, किंतु जब शिव जी इन लीलाओं को निहार रहे थे तो अचानक वायु का झोंका उसके सुंदर वस्त्र तथा उसकी करधनी को जो उसे ढके हुए थे उड़ा ले गई। इस प्रकार शिव जी ने उस स्त्री को देखा जिसके शरीर का अंग प्रत्यंग सुगठित था और उस सुंदर स्त्री ने भी उनकी ओर देखा। अतएव यह सोचकर कि वह स्त्री उनके प्रति आकृष्ट है, शिव जी उसके प्रति अत्यधिक आकृष्ट हो गए। उस स्त्री के साथ रमण करने की कामेक्षा के कारण अपना विवेक खोते हुए शिव जी उसके लिए इतने पागल हो उठे कि भवानी की उपस्थिति में भी वह उसके समीप जाने में तनिक भी नहीं हिचकिचाए।
अभी क्या हुआ कि कामदेव जो थे ना, कामदेव को पहले शिव जी ने पसंद कर दिया था। तो अब कामदेव के साथ, कामदेव जब बिल्कुल भगवान समर्थन दे रहे हैं तो कामदेव जो है पूरी तरह से शिव जी को वो कर देते हैं। राधा गोस्वामी महाराज बता रहे
थे। वह सुंदरी पहले ही नंगी हो चुकी थी और जब उसने देखा कि शिव जी उसकी ओर चले आ रहे हैं तो वह अत्यंत लज्जित हुई। इस तरह वह हंसती रही, किंतु उसने अपने आप को वृक्षों के बीच छिपा लिया। वह किसी एक ही स्थान पर खड़ी नहीं रही। शिव जी की इंद्रियां विचलित थीं और वह काम वासनाओं के वशीभूत होकर उसका पीछा करने लगे, जिस तरह कोई कामी हाथी हथनी का पीछा करता है। तेजी से उसका पीछा करते हुए शिव जी ने उसके बालों का जूड़ा पकड़ लिया और उसे अपने पास खींच लिया। फिर उसके ना चाहने पर भी उन्होंने अपनी बाहों में भरकर उसका आलिंगन कर लिया। जिस तरह हाथी हथनी का आलिंगन करता है, उसी तरह वह स्त्री जिसके बाल बिखरे थे शिव जी द्वारा आलिंगित होकर सांप की तरह सरकने लगी। हे राजा, यह बड़े और ऊंचे नितंबों वाली स्त्री भगवान द्वारा प्रस्तुत की गई योग माया थी। उसने अपने को जिस तिस भांति शिव जी के आलिंगन से छुड़ाया और भाग गई। शिव जी भगवान विष्णु का जो आश्चर्यजनक कार्य करने वाले हैं और जिन्होंने मोहिनी रूप धारण कर रखा था, ऐसे पीछा करने लगे जैसे वह काम वासना रूपी शत्रु द्वारा सताए गए हों।
अब मोहिनी किधर किधर से भागते देखिएगा।
जिस प्रकार गर्भ धारण करने के लिए योग्य हुई हथनी का पीछा मदांध हाथी करता है, उसी तरह शिव जी उस सुंदर स्त्री का पीछा कर रहे थे और उनका वीर स्खलित हो गया। यद्यपि स्खलित हुआ उनका वीर व्यर्थ नहीं जाता।
सोने के खंड बन गया।
हे राजन, पृथ्वी पर जहाँ जहाँ महापुरुष शिव जी का वीर गिरा, बाद में वहीं वहीं सोने तथा चांदी के खाने प्रकट हो गए। शिव जी मोहिनी का पीछा करते हुए नदियों तथा झीलों के किनारे, पर्वतों, जंगलों, उद्यानों के पास तथा जहाँ कहीं ऋषि मुनि रह रहे थे गए।
जहाँ पे शिव जी के वो थे, मतलब वर्शिपर थे।
अच्छा,
राजा
अच्छा।
आश्रम था, मोहिनी उधर उधर से भागे ताकि शिव जी पीछे पीछे भाग रहे हैं। और शिव जी भी दौड़ते दौड़ते, शिव जी तो उलंग हो जाते हैं, शिव जी ज्यादा शरीर के भाग में रहते नहीं है, तो शिव जी भी उलंग हो गए। मोहिनी आगे के भाग रहे और शिव जी पीछे पीछे भाग रहे हैं, और उनका जो भक्त है भक्तगण है वो देखते भगवान आ रहे हैं उनके, तो ऐसा हालत किया भगवान ने।
हे राजश्रेष्ठ महाराज परीक्षित, जब शिव जी का वीर पूर्णतया अस्खलित हो गया तो उन्होंने देखा कि वह किस प्रकार भगवान द्वारा उत्पन्न माया के द्वारा वशीभूत हो गए थे। इस तरह उन्होंने अपने आप को माया द्वारा और अधिक वशीभूत होने से रोका। इस प्रकार शिव जी को अपनी स्थिति तथा असीम शक्तिमान भगवान की स्थिति का बोध हो गया। इस ज्ञान के प्राप्त होने पर उन्हें तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ कि भगवान विष्णु ने किस अद्भुत विधि से उन पर माया का जाल फैलाया था।
और ये सब पार्वती और पार्षद देख रहे हैं।
शिव जी को अविचलित एवं लज्जा रहित देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने अपना मूल रूप धारण कर लिया और वह इस प्रकार बोले। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, हे देवताओं में श्रेष्ठ, यद्यपि तुम मेरे द्वारा स्त्री रूप धारण करने की मेरी शक्ति द्वारा अत्यधिक पीड़ित हुए हो, किंतु तुम अपने पद पर स्थिर हो, अतः तुम्हारा कल्याण हो। हे प्रिय शंभु, इस भौतिक जगत में तुम्हारे अतिरिक्त ऐसा कौन है जो मेरी माया से पार पा सके। सामान्यतया लोग इंद्रिय भोग में आसक्त रहते हैं और इसके प्रभाव में फंस जाते हैं। निस्संदेह उनके लिए माया के प्रभाव को लांघ पाना अत्यंत कठिन है। यह भौतिक बहिरंगा शक्ति जो सृष्टि में मुझे सहयोग देती है और प्रकृति के तीन गुणों में प्रकट होती है, अब तुम्हें मोहित नहीं कर सकेगी। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, वत्स स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह धारण करने वाले भगवान द्वारा इस प्रकार प्रशंसित होकर शिव जी ने उनकी परिक्रमा की। फिर उनकी अनुमति लेकर शिव जी अपने गणों सहित अपने धाम कैलाश लौट गए। हे भरतवंशी महाराज, तब शिव जी ने परम प्रसन्न होकर अपनी पत्नी भवानी को संबोधित किया, जो सभी अधिकारियों द्वारा भगवान विष्णु की शक्ति के रूप में स्वीकार की जाती हैं। शिव जी ने कहा, हे देवी, अब तुमने भगवान की माया देख ली है, वह अजन्मा ही सबके स्वामी हैं। यद्यपि मैं उनके प्रमुख विस्तारों में से एक हूँ, तो भी मैं उनकी शक्ति से भ्रमित हो गया था। तो फिर उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो माया पर पूर्णतः आश्रित हैं। जब मैंने 1000 वर्षों की योग साधना पूरी कर ली तो तुमने मुझसे पूछा था कि मैं किसका ध्यान कर रहा था। अब ये वही परम पुरुष हैं जिन तक काल नहीं पहुंच पाता और जिन्हें वेद नहीं समझ पाते। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जिस पुरुष ने क्षीर सागर के मंथन के लिए अपनी पीठ पर महान पर्वत धारण किया था, वही सारंग धनवा नामक भगवान है।
सारंग मतलब होता है सारंग भगवान?
नहीं, ये नहीं, नहीं, ये वो सारंग नहीं है, उसमें तो पूरा रहा होता है, इसमें आधा रहा है। सारंग धनवा नामक भगवान है। मैंने तुमसे अभी उन्हीं के परिक्रमा का वर्णन किया है। जो कोई क्षीर सागर के मंथन की इस कथा को निरंतर सुनता या सुनाता है, उसके प्रयास कभी भी निष्फल नहीं होगा। दरअसल भगवान के यश का कीर्तन ही इस भौतिक संसार में समस्त कष्टों को ध्वस्त करने का एकमात्र साधन है। एक तरुण स्त्री का रूप धारण करके तथा इस प्रकार असुरों को मोहित करके भगवान ने अपने भक्तों अर्थात देवताओं को क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न अमृत बाँट दिया। मैं उन भगवान को जो अपने भक्तों की इच्छाओं को सदा पूरा करते हैं अपना सादर नमस्कार अर्पित करता हूँ। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के अंतर्गत मोहिनी मूर्ति अवतार पर शिव जी का मोहित होना नामक 12वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अभिनय तात्पर्य पढ़े हुए कौन पढ़ेगा?
पढ़ लीजिए।
इसको भी पूछा ना।
अध्याय 13 भावी मनुओं का वर्णन।
भावी मुनि मुनि
भावी भावी मतलब भविष्य
आने वाला
इंट्रोडक्शन भी पढ़ेंगे ना।
14 मनुओं में से 6 मनुओं का वर्णन पहले हो चुका है, अब इस अध्याय में 7वें से 14वें मनुओं का एक एक करके वर्णन किया जाएगा। 7वां मनु
धीरे धीरे पढ़ेंगे तो हम समझ जाएंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो समझ।
7वां मनु विवस्वान का पुत्र है और श्राद्ध देव कहलाता है। उसके 10 पुत्र हैं, इक्ष्वाकु, नभग, दृष्ट, सरयाति, नरिष्यंत, नभाग, दृष्ट, तरुष, पृषाद्र तथा वासुमान। इस मनवंतर के देवता हैं आदित्यगण, वसुगण, रुद्रगण, विश्वदेवा, मरुद्गण, अश्विनी कुमार तथा ऋभुगण इत्यादि। स्वर्ग का राजा इंद्र पुरंदर के नाम से जाना जाता है और सप्तऋषि कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि तथा भरद्वाज के नामों से विख्यात हैं। इस मनवंतर में भगवान विष्णु कश्यप के पुत्र के रूप में अदिति के गर्भ से उत्पन्न होते हैं। 8वें मनवंतर के मनु सावणी हैं, उनके पुत्र निर्मोक इत्यादि हैं और देवताओं में सुत्पा इत्यादि हैं। विरोचन पुत्र बलि इंद्र हैं और गालव तथा परशुराम सप्तऋषियों में से हैं। इस मनवंतर में भगवान देवगुह्य तथा सरस्वती से सरस्वती के पुत्र सार्वभौम के रूप में जन्म लेते हैं। 9वें मनवंतर में दक्ष सावणी मनु हैं, उनके पुत्रों में भूतकेतु प्रमुख हैं और देवताओं में मरीचिगर्भ इत्यादि। इंद्र का नाम अद्भुत है और सप्तऋषियों में है द्युतिमान। इस मनवंतर में आयुष्मान तथा अम्बुधारा से जन्मा ऋषभ अवतार होता है। 10वें मनवंतर के मनु ब्रह्म सावणी हैं, उनके पुत्रों में भूरिसेन प्रमुख हैं और सप्तऋषियों में हविष्वान तथा अन्य हैं। देवताओं में सुवासन गण प्रधान हैं और शंभु इंद्र हैं। इस मनवंतर का अवतार विश्वक्सेन है जो शंभु का मित्र है और विश्वश्रेष्ठा नामक ब्राह्मण के घर में विसूची के गर्भ से उत्पन्न हुआ। 11वें मनवंतर में धर्म सावणी मनु हैं, जिनके 10 पुत्रों में सत्य धर्म प्रमुख हैं। देवताओं में विहंगम गण तथा सप्तऋषियों में अरुण इत्यादि हैं। वैदृत इंद्र था, इस मनवंतर में धर्म सेतु अवतार हुआ जो वैदृत तथा आर्यक से उत्पन्न हैं। 12वें मनवंतर में रुद्र सावर्णी मनु हैं, जिनके पुत्रों में देववान प्रमुख हैं। देवताओं में हरितगण इत्यादि हैं, ऋतधामा इंद्र हैं और सप्तऋषियों में तपोमूर्ति तथा अन्य हैं। इस मनवंतर का अवतार सुधामा या स्वाधामा है जो सुनृता के गर्भ से जन्म लेता है, उसके पिता का नाम सत्यसहा है। 13वें मनवंतर के मनु देव सावणी हैं, उनके पुत्रों में चित्रसेन तथा देवताओं में सुकर्मा प्रमुख हैं। दिवसपति इंद्र हैं और निर्मोक सप्तऋषियों में से हैं। इस मनवंतर का अवतार योगेश्वर है जिसके माता पिता बृहति तथा देवहूत्र हैं। 14वें मनवंतर के मनु इंद्र सावणी हैं, उनके पुत्रों के नाम उरु तथा गंभीर है। पवित्रगण इत्यादि देवता सूचि इंद्र और अग्नि तथा बाहु इत्यादि सप्तऋषि हैं। इस मनवंतर का अवतार बृहद भानु है जो वितना के गर्भ से उत्पन्न है और सत्रायन का पुत्र है। इन मनुओं का शासनकाल कुल मिलाकर 1000 चतुर्युगों के तुल्य है, अर्थात 1000 वर्ष का 43,00,000 गुना है। श्री सुकुवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा वर्तमान है अच्छा वो नहीं
पढ़ना भी दे दी।
अध्याय 14 विश्व व्यवस्था की पद्धति। इस अध्याय में मनु के लिए भगवान द्वारा नियत कर्तव्यों का वर्णन हुआ है। सारे मनु तथा उन सब के पुत्र ऋषि, देवता और इंद्र भी भगवान के विभिन्न अवतारों के आदेशों के अनुसार कार्य करते हैं। प्रत्येक चतुर्युग में सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग तथा कलयुग आते हैं और प्रत्येक चतुर्युग के अंत में भगवान के आदेश अनुसार कर्म करने वाले ऋषिगण वैदिक ज्ञान का वितरण करके शाश्वत धार्मिक नियमों का की पुनः स्थापना करते हैं। मनुष्य का कर्तव्य धर्म की पद्धति को पुनः स्थापित करना है। मनु के पुत्र उसके आदेशों का पालन करते रहते हैं, पालन
करते हैं और इस प्रकार सारा विश्व मनु तथा उसकी संतानों द्वारा पालित होता है। इंद्रगण स्वर्ग लोकों के विभिन्न शासक हैं। वे देवताओं की सहायता से तीनों लोकों पर शासन चलाते हैं। भगवान भी विभिन्न युगों में अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। वे सनक, सनातन, यज्ञवल्क्य, दत्तात्रेय तथा अन्यों के रूप में प्रकट होते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान, कर्तव्य, योग, वे सिद्धांतों इत्यादि के विषय में उपदेश देते हैं। वे मारीची इत्यादि के रूप में संतानों उत्पन्न करते हैं। राजा के रूप में वे दुष्टों को दंड देते हैं और काल के रूप में वे सृष्टि का संहार करते हैं। कोई तर्क कर सकता है कि यदि सर्वशक्तिमान भगवान मात्र अपनी इच्छा से ही सब कुछ कर सकते हैं तो फिर उन्होंने इतने महापुरुषों को व्यवस्था का भार क्यों दे रखा है। जो लोग माया के वश में हैं वे नहीं समझ सकते कि भगवान किस तरह और क्यों ऐसा करते हैं। नेक्स्ट
बलि महाराज कॉन्क्वर्स द हेवनली प्लैनेट्स
अगला चैप्टर 15।
बलि महाराज द्वारा स्वर्गलोक पर विजय। इस अध्याय में बतलाया गया है कि बलि ने विश्वजीत यज्ञ संपन्न करने के बाद किस तरह वरदान के रूप में एक रथ तथा युद्ध की विविध सामग्री प्राप्त की और उसकी सहायता से उसने स्वर्ग के राजा इंद्र पर किस तरह चढ़ाई की। सारे देवता उसके भय से स्वर्गलोक छोड़ छोड़कर अपने गुरु के आदेशानुसार दूर दूर चले गए। महाराज परीक्षित यह जानते थे कि भगवान वामन देव ने किस प्रकार बलि महाराज से 3 पग भूमि लेने के बहाने उससे सब कुछ ले लिया और उसे बंदी बना लिया। सुखदेव गोस्वामी ने यह जिज्ञासा का उत्तर इस प्रकार दिया। जैसा कि इस स्कंद के 11वें अध्याय में वर्णन किया जा चुका है कि असुरों तथा देवताओं की लड़ाई में बलि महाराज पराजित हुए और युद्ध में मारे गए, किंतु शुक्राचार्य की कृपा से वे पुनः जीवित हो गए। इस तरह वे अपने गुरु शुक्राचार्य की सेवा करने लगे। भृगुवंशी उन पर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उन्हें विश्वजीत यज्ञ में लगा दिया। जब यह यज्ञ संपन्न हुआ तो उस यज्ञ अग्नि से एक रथ, घोड़ा, एक पताका, एक धनुष, एक कवच तथा बाणों के 2 तरकस प्रकट हुए। बलि महाराज के पितामह महाराज प्रहलाद ने उन्हें फूलों की एक शाश्वत माला दी और शुक्राचार्य ने एक शंख दिया। तब प्रहलाद ब्राह्मणों एवं अपने गुरु शुक्राचार्य को नमस्कार करके उन्होंने इंद्र से युद्ध करने के लिए तैयारी की और वे अपने सैनिकों सहित इंद्रपुरी गए। अपना शंख बजाकर उन्होंने इंद्र के राज्य की सीमाओं पर आक्रमण कर दिया। बलि महाराज के शौर्य को देखकर इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए और उनसे बलि के पराक्रम की चर्चा की तथा पूछा कि वह क्या करे। बृहस्पति ने देवताओं को बताया कि चूंकि बलि को ब्राह्मणों से अद्वितीय शक्ति प्राप्त हुई है थी, अतएव देवता उससे युद्ध नहीं कर सकते। उनकी एकमात्र आशा भगवान की कृपा प्राप्त करने में है। दरअसल कहीं भी कोई विकल्प था भी नहीं। ऐसी दशा में बृहस्पति ने देवताओं को सलाह दी कि वे स्वर्गलोक छोड़कर कहीं अदृश्य हो जाएं। देवताओं ने उनकी यह बात मान ली और बलि महाराज तथा उनके संयोगियों ने सारे इंद्रलोक को हथिया लिया। भृगु मुनि के वंशजों ने भृगु के शिष्य बलि महाराज के प्रति अत्यंत वत्सल्य होने के कारण उन्हें 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने में लगा दिया। इस प्रकार बलि महाराज ने स्वर्गलोकों के ऐश्वर्य का भोग किया। श्री प्रभुपाद की जय। यहाँ पे एक मिस्टेक है थोड़ा सा। यहाँ पर तब प्रहलाद ने गुरु को, प्रहलाद की जगह यहाँ पर बलि होगा।
हाँ, टेम्पररी राजा बना दिया, परमानेंट जुगाड़ करने के लिए बोल रहे थे कि 100 दिया करो।
नहीं नहीं, यहाँ पर युद्ध के लिए अपने ब्राह्मणों गुरु से नमस्कार, युद्ध इंद्र से युद्ध करने की तैयारी की। प्रहलाद की जगह यहाँ पर बलि। प्रिंटिंग मिस्टेक।
आप
पयो व्रत पूजा विधि का पालन करना।
कौन सा व्रत?
पयो
पयोव्रत। जैसा कि इस अध्याय में वर्णन किया गया है, देवताओं की माता अदिति ने अत्यंत व्यथित होने पर उनके पति कश्यप मुनि ने बताया कि वे अपने पुत्रों के लाभ के लिए तपस्या करके किस तरह व्रत रखें। चूंकि स्वर्ग में देवता दिखलाई नहीं पड़ रहे थे, अतएव उनकी माता अदिति उनके वियोग के कारण अत्यधिक दुखी थी। अनेकानेक वर्षों के बाद एक दिन कश्यप मुनि ध्यान से समाधि से उठे और अपने आश्रम वापस आए। उन्होंने देखा कि उनका आश्रम सुंदर नहीं लग रहा था और उनकी पत्नी अत्यंत व्यथित थी। उन्हें आश्रम भर में हर जगह शोक के चिन्ह दिखे। अतएव मुनि ने अपनी पत्नी से आश्रम की कुशलता के विषय में पूछा और जानना चाहा कि वह इतनी व्यथित क्यों दिख रही हैं। अदिति ने कश्यप मुनि को आश्रम की कुशलता के बारे में बताने के बाद कहा कि अपने पुत्रों की अनुपस्थिति के कारण वह उदास है। तब अदिति ने उनसे प्रार्थना की कि वे यह बतलाएं कि उनके पुत्र किस प्रकार लौटकर अपने पदों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। वे अपने पुत्रों का कल्याण चाहती थी। अदिति ने प्रार्थना से द्रवित होकर कश्यप मुनि ने अदिति की प्रार्थना से द्रवित होकर कश्यप मुनि ने उन्हें आत्म साक्षात्कार का दर्शन, पदार्थ तथा आत्मा के अंतर तथा भौतिक शक्ति से अप्रभावित रहने की विधि का उपदेश दिया। किंतु जब उन्होंने देखा कि उनके इन उपदेशों के बावजूद अदिति संतुष्ट नहीं है, तो उन्होंने उसे वासुदेव जनार्दन की पूजा करने की सलाह दी। उन्होंने उसे विश्वास दिलाया कि केवल भगवान वासुदेव ही उन्हें संतुष्ट करके उनकी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। फिर जब अदिति ने भगवान वासुदेव की पूजा करने की इच्छा व्यक्त की, तो प्रजापति कश्यप ने पयोव्रत नामक पूजा की विधि बतलाई, जो 12 दिनों में संपन्न होती है। उन्हें ब्रह्मा जी ने बताया था कि इस विधि से भगवान कृष्ण को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। इस प्रकार कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी को इस व्रत का तथा इसके विधि विधानों का पालन करने की सलाह दी।
जोर से पढ़ना पड़ेगा लेकिन।
The Supreme Personality of Godhead, being very pleased by the Payovrata ceremony performed by Aditi, appeared before her in full opulence. At her request, the Lord agreed to become her son. After Aditi performed the Payovrata ceremony for 12 continuous days, the Lord, who was certainly very pleased with her, appeared before her with four hands and dressed in yellow garments. As soon as Aditi saw the Supreme Personality of Godhead present before her, she immediately got up with great ecstatic love for the Lord. She fell to the ground to offer respectful obeisances. Aditi's throat was choked because of ecstatic feelings, and her entire body trembled with devotion. Although she wanted to offer suitable prayers to the Lord, she could not do anything, and thus she remained silent for some time. Then, feeling solace, observing the beauty of the Lord, she offered her prayers. The Supreme Personality of Godhead, the super soul of all living entities, was very pleased with her, and he agreed to become her son by incarnating as a plenary expansion. He was already pleased by Kashyapa Muni's austerities, and thus he agreed to become their son and maintain the demigods. After giving his word of honor to this effect, the Lord disappeared. Following the order of the Supreme Personality of Godhead, Aditi engaged in the service of Kashyapa Muni, who could see by samadhi that the Lord was within him, and who thus placed his semen in the womb of Aditi. Lord Brahma, who is known as Hiranyagarbha, understood that the Supreme Personality of Godhead had entered Aditi's womb. Thus he offered prayers to the Lord. Srila Prabhupada ki jaya. Ye 17th last ho gaya.
परीक्षित महाराज
इसको इसको
हैं।
आज लेवल सिक्स खत्म भी हो गया बता रहे तो बस 12:30 तक होना है
इसको डिस्कशन कर ले 17 को
वो बलि महाराज वाले में ये कोई भी कर लीजिए
जो आपको सजेस्ट कीजिए
शिवजी वाला डिस्कशन का सही
मुझे भी उसी को
मैंने बोला था इधर
12 तक 20 मिनट हैं दो हो जाएंगे
श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा स्त्री के रूप में भगवान हरि ने दानवों को मोह लिया और देवताओं को अमृत पिलाया इस लीलाओं को सुनकर बैल पर सवारी करने वाले शिव जी उस स्थान पर गए जहां भगवान मधुसूदन रहते हैं शिव जी उस स्थान चले जहाँ भगवान मधुसूदन रहते हैं शिव जी अपनी पत्नी उमा को साथ लेकर तथा अपने साथी प्रेतों से घिर कर वहाँ भगवान के स्त्री रूप को देखने मतलब परपट पढ़ना है तात्पर्य भगवान विष्णु इस भौतिक जगत के भीतर सत्वगुण अवतार के रूप में निवास करते हैं शिव जी तमोगुण के अवतार हैं और ब्रह्मा जी रजोगुण के अवतार हैं किंतु यद्यपि शिव विष्णु जी इन्हीं में से एक हैं वे उसी कोटि के नहीं हैं भगवान विष्णु देव देव हैं अर्थात वे समस्त देवताओं के प्रमुख हैं क्योंकि शिव जी इस भौतिक जगत में हैं अतएव भगवान विष्णु की शक्ति में शिव जी सम्मिलित हैं इसलिए विष्णु जगतव्यापी या सर्वव्यापी कहलाते हैं शिव जी कभी कभी महेश्वर कहलाते हैं अतएव लोग सोचते हैं कि शिव जी ही सब कुछ हैं किंतु यहाँ पर शिव जी विष्णु को जगदीश कहकर संबोधित कर रहे हैं इसका अर्थ है ब्रह्मांड के स्वामी कभी कभी शिव जी विशेश्वर भी कहलाते हैं किंतु यहाँ पर वे विष्णु को जगन्मय कहकर संबोधित करते हैं जिससे सूचित होता है कि विश्वेश्वर भी भगवान विष्णु के अधीन हैं भगवान विष्णु वैकुंठ लोक के स्वामी हैं फिर भी वे भौतिक जगत को भी नियंत्रित करते हैं जैसा कि भगवद गीता में भी कहा गया है मैं अध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचर ब्रह्मा जी तथा शिव जी भी कभी कभी ईश्वर कहलाते हैं किंतु परम ईश्वर तो भगवान विष्णु या कृष्ण ही है जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है ईश्वर परमः कृष्णः भगवान तो कृष्ण या विष्णु है जितनी भी वस्तुओं का अस्तित्व है वे भगवान विष्णु के ही कारण उचित क्रम में कार्यशील है अंडांतरस्तर परमाणु चयांतरस्थ यहाँ तक कि परमाणु भी अपने भीतर भगवान विष्णु की उपस्थिति के कारण कार्यशील है
प्रार्थना कर रहे हैं हे भगवान अब यज्ञ हाँ खाली तात्पर्य
तो मीनिंग मतलब से रेफरेंस थे तो तात्पर्य पढ़ेंगे अरे पढ़ लो वो अच्छा पढ़ रहे हो ऐसे पढ़ते पढ़ते तो आदत आएगा आदम विष्णु पहले बंगाली में पढ़ते थे पता है हिंदी अब जितना अच्छा हिंदी बोलते
हे भगवान क्या
नहीं वो मेरे बात पे असर
नहीं नहीं कितने अच्छे से हे भगवान बोल
जैसे इसमें भाव डाल दिया
आपने कोई बात नहीं
जबरदस्ती कर पढ़वाया जा
बस नहीं है ना कोई बात नहीं
व्यक्त अव्यक्त मिथ्या अहंकार तथा इस दृश्य जगत का आदि
दृश्य जगत का
आदि उत्पत्ति पालन तथा संहार सभी कुछ आपसे है किंतु आप परम सत्य परमात्मा परम ब्रह्म हैं अतएव जन्म मृत्यु तथा पालन जैसे
परिवर्तन आप में नहीं पाए जाते। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की
जय।
यतो वा मानी भूतानी जयंते। वैदिक मंत्रों के अनुसार प्रत्येक वस्तु भगवान से उद्भूत है। भगवत गीता में स्वयं भगवान कहते हैं भूमि रापो अनल वायु खम मनो बुद्धि एवच अहंकार इत्यम ये मिथ्या प्रकृति बिना प्रकृति अस्तुता। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार ये आठ मिलकर मेरी अलग अलग भौतिक शक्तियाँ बनाते हैं। दूसरे शब्दों में दृश्य दृश्य जगत के अवयव भी भगवान की शक्ति से बने हैं। किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि सारे अवयव इनसे प्राप्त होने के कारण भगवान अब पूर्ण नहीं रहे हैं। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। क्योंकि वे पूर्ण इकाई हैं, अतएव भले ही उनसे अनेक पूर्ण इकाइयां क्यों ना उद्भूत हों, वे पूर्ण ही बने रहते हैं। इस तरह भगवान अव्यय अर्थात अक्षय कहलाते हैं। जब तक हम परम सत्य को अचिंत भेदाभेद नहीं मान लेते, तब तक हमें परम सत्य की स्पष्ट धारणा नहीं हो सकती। भगवान हर वस्तु के मूल हैं। देवानाम वे समस्त देवताओं के मूल कारण हैं। अहम सर्वस्य प्रभवा
मतलब प्रभव
उन्हीं से हर वस्तु उद्भूत होती है। सभी दशाओं में कर्ता कारक वस्तु परक सकारात्मक नकारात्मक इत्यादि इत्यादि हम इस समग्र दृश्य जगत में चाहे जो भी धारणा करें वह वास्तव में भगवान ही हैं। उनके लिए यह मेरा है तथा किसी अन्य का है में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि वे सब कुछ हैं। इसलिए वे अव्यय कहलाते हैं, जिसका अर्थ है परिवर्तन रहित तथा ना समाप्त होने वाला। क्योंकि भगवान अव्यय हैं, अतएव वे परम सत्य हैं।
जो शुद्ध भक्त या महान संत पुरुष मुनिगण जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने के इच्छुक है तथा इंद्रिय तृप्ति की समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, वे आपके चरण कमलों की निरंतर भक्ति में लगे रहते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की
जय।
जो मनुष्य सोचता है कि मैं यह शरीर हूँ और इससे संबंधित हर वस्तु मेरी है, तो वह भौतिक जगत में होता है। अतो ग्रह क्षेत्र सुताप त्रिजनस्य मोह अयमहम ममेति यह भौतिक जीवन का लक्षण है। जीवन की भौतिकतावादी अवधारणा में मनुष्य सोचता है कि यह मेरा घर है, यह मेरी जमीन है, यह मेरा परिवार है, यह मेरा प्रांत है इत्यादि इत्यादि। किंतु जो लोग मुनय हैं अर्थात जो नारद मुनि के पदचिन्हों का अनुगमन करने वाले संत पुरुष हैं, वे बिना किसी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगे रहते हैं। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मानुवृत्तम चाहे यह जीवन हो या अगला जीवन, ऐसे संत भक्तों की एकमात्र चिंता भगवान की सेवा करने के लिए रहती है। अतः वे इतने परम पूर्ण भी रहते हैं क्योंकि उन्हें अन्य कोई इच्छा नहीं सताती। भौतिक इच्छा के द्वंद्व से मुक्त होने के कारण श्रेयस कामा कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में उन्हें धर्म अर्थ या काम से कोई प्रयोजन नहीं रहता। ऐसे लोगों की एकमात्र चिंता मोक्ष ही है। यह मोक्ष ब्रह्म से तदाकार होना नहीं है, जैसा कि मायावादी चिंतक मानते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने बतलाया है कि वास्तविक मोक्ष का अर्थ है भगवान के चरण कमलों की शरण में जाना। उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को उपदेश देते हुए इस तथ्य को स्पष्ट तौर पर बतलाया था। सार्वभौम भट्टाचार्य श्रीमद् भागवत के मुक्ति पदे शब्द को शुद्ध करना चाहते थे, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें बताया कि श्रीमद् भागवत के किसी भी शब्द को सुधारने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने समझाया कि मुक्ति पदे भगवान विष्णु के चरण कमलों का सूचक है, जो मुक्ति के दाता है। और इसलिए मुकुंद कहलाते हैं। शुद्ध भक्तों को भौतिक वस्तु से कोई सरोकार नहीं रहता, वह धर्म अर्थ या काम के लिए भी चिंतित नहीं रहता, वह एकमात्र भगवान के चरण कमलों की सेवा करने में रुचि रखता है। श्रील प्रभुपाद की जय।
हे प्रभु, आप परब्रह्म तथा सभी प्रकार से पूर्ण हैं। पूर्णता आध्यात्मिक होने के कारण आप नित्य प्रकृति के भौतिक गुणों से मुक्त तथा दिव्य आनंद से पूरित हैं। निसंदेह आपके लिए शोक करने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि आप समस्त कारणों के परम कारण हैं। अतः एवं आपके बिना कोई भी अस्तित्व में नहीं रह सकता। फिर भी जहाँ तक कारण तथा कार्य का संबंध है, हम आपसे भिन्न हैं, क्योंकि एक दृष्टि से कार्य तथा कारक पृथक पृथक हैं। आप सृष्टि पालन तथा संहार के मूल कारण हैं। आप समस्त जीवों को वर देते हैं। हर व्यक्ति अपने कार्यों के फलों के लिए आप पर निर्भर है, किंतु आप सर्वदा स्वतंत्र हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की
जय।
यह सारा ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप से व्याप्त है। सारे जीव मुझमें हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। इससे अचिंत्य भेदाभेद अर्थात एक साथ एकत्व तथा भिन्नता दर्शन की व्याख्या हो जाती है। प्रत्येक वस्तु परम ब्रह्म है, फिर भी परम पुरुष हर वस्तु से पृथक स्थित है। निसंदेह हर भौतिक वस्तु से पृथक स्थित होने के कारण वे परम ब्रह्म, परम कारक कारण तथा परम नियंता हैं। ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, भगवान परम कारण हैं और उनके स्वरूप को प्रकृति के भौतिक कारणों से कोई सरोकार नहीं रहता। भक्त प्रार्थना करता है, जिस तरह उसका आपका भक्त समस्त इच्छाओं से पूर्णता रहित है, उसी प्रकार आप भी इच्छाओं से पूर्णता मुक्त हैं। आप पूर्णता स्वतंत्र हैं। यद्यपि सारे जीव आपकी सेवा में लगे रहते हैं, किंतु आप किसी की सेवा पर आश्रित नहीं हैं। यद्यपि यह संसार पूरी तरह से आपके द्वारा सृजित है, किंतु सब कुछ आपकी स्वीकृति पर निर्भर करता है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, मम स्मृति ज्ञान पोहम च स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति आप ही से उत्पन्न है। स्वतंत्र रूप से कुछ भी नहीं किया जा सकता, किंतु आप अपने सेवकों द्वारा की गई सेवा पर आश्रित न रहते हुए स्वतंत्र होकर कर्म करते हैं। सारे जीव अपनी मुक्ति के लिए आपकी कृपा पर आश्रित रहते हैं, किंतु जब आप उन्हें मुक्ति देना चाहते हैं, तो आप किसी अन्य पर आश्रित नहीं रहते। निसंदेह आपकी अहेतुकी कृपा से आप किसी को भी मुक्ति दे सकते हैं। जिन्हें आपकी कृपा प्राप्त होती है, वे कृपा सिद्धि कहलाते हैं। सिद्धि पात्र को प्राप्त करने में अनेक जन्म लग जाते हैं। बहु नाम जन्मांते ज्ञान माम प्रबंते, फिर भी कठोर तपस्या किए बिना भी आपकी कृपा से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। भक्ति को अहेतुकी होना चाहिए और अवरोधों से मुक्त अहेतुके प्रति हता आयात्म सुप्रसिद्धति, यही निराशिष्य पद है। अर्थात सभी प्रकार के फलों की आशा से मुक्त शुद्ध भक्त निरंतर आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, किंतु आप उनकी सेवा पर आश्रित न रहकर किसी पर भी कृपा कर सकते हैं।
हे प्रभु, आप अकेले ही काड़े भी हैं और
ऑडिबल नहीं है, जोर से
सुनाई दे रहा। आगे आ जाओ। हे प्रभु, आप अकेले ही काड़े भी हैं तथा कारण भी हैं। जो जिनको सुनना है वो नजदीक आ जाए, जिनको नहीं सुनना है वो घूमने जा सकते हैं।
आवाज बुलंद कीजिए,
आवाज बुलंद होती
है। आप भी इधर आ जाइए ना,
मुझे कह रहे प्रसन्न रहो,
बीच में बैठ जाता
हूँ। जिसको पढ़ना है इधर आके बैठेंगे और पढ़ेंगे।
वैसे वहाँ पर मैं आसन लगा हुआ, हे प्रभु, आप अकेले ही कार्य भी हैं तथा कारण भी हैं, अतएव आप दो प्रतीत होते हुए भी परम पूर्ण एक हैं। जिस तरह आभूषण के सोने तथा खान के सोने में कोई अंतर नहीं होता, उसी तरह कारण तथा कार्य में अंतर नहीं होता, दोनों ही एक हैं। अज्ञान के कारण ही लोग अंतर तथा द्वैत गढ़ते हैं। आप भौतिक कलमश से मुक्त हैं, और चूंकि संपूर्ण ब्रह्मांड आपके द्वारा उत्पन्न है और आपके बिना विद्यमान नहीं रह सकता, अतएव यह आपके दिव्य गुणों का प्रभाव है। इस प्रकार इस अवधारणा को माना नहीं जा सकता कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि सारे जीव भगवान की तटस्था शक्ति के रूप में हैं, और जीवों द्वारा अपनाए गए विविध शरीर भौतिक शक्ति के परिणाम हैं। इस प्रकार शरीर भौतिक तथा आत्मा और आत्मा आध्यात्मिक माना जाता है, तथापि इन दोनों का उद्गम एक ही भगवान है। जैसा कि भगवान भगवद गीता में बताते हैं, भूमि रापो अनलो वायु खम मनम बुद्धिरेव च
अहंकार इदियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा।
और भी है
अपरेयम इतस्तु अन्य विद्धि में प्रकृतिम पराम जीव भूतां महाबाहो
धार्यते
जगत।
पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार, ये आठों मिलकर मेरी भिन्न भौतिक शक्तियां बनाते हैं। किंतु हे महाबली अर्जुन, इस कनिष्ठ प्रकृति के अतिरिक्त मेरी एक श्रेष्ठ शक्ति है, जो भौतिक प्रकृति से संघर्ष करने वाले तथा ब्रह्मांड को धारण करने वाले सभी जीवों से बनती है। इस प्रकार पदार्थ तथा जीव दोनों भगवान की शक्ति की अभिव्यक्तियाँ हैं। चूँकि शक्ति तथा शक्तिमान पृथक पृथक नहीं है, और चूंकि भौतिक तथा तटस्था दोनों शक्तियां परम शक्तिमान भगवान की शक्तियां हैं, अतएव अंततः भगवान ही सर्वे सर्वा हैं। इस प्रसंग में सोने का उदाहरण दिया जा सकता है। एक जो सांचे में ढाला नहीं गया है, दूसरा जो सांचे में ढाला जाकर विविध आभूषणों में परिणत कर दिया गया है। सोने का कुंडल तथा खान से निकला सोना केवल कार्य कारण रूप में भिन्न है, अन्यथा वे एक हैं। वेदांत सूत्र में वर्णन हुआ है कि ब्रह्म हर एक वस्तु का कारण है। जन्मादस्य यतः, प्रत्येक वस्तु परम ब्रह्म से उत्पन्न होती है, प्रत्येक वस्तु भिन्न भिन्न शक्तियों के रूप में उससे उद्भूत होती है। इसलिए इनमें से किसी भी शक्ति को मिथ्या नहीं मानना चाहिए। मायावादियों द्वारा ब्रह्म तथा माया में अंतर करना मात्र उनके अज्ञान के कारण है। भगवत चंद्र चंद्रिका में श्रीमद् वीर राघव आचार्य ने वैष्णव दर्शन का वर्णन इस प्रकार दिया है। दृश्य जगत को सत तथा असत और चित तथा अचित बतलाया गया है। पदार्थ अचित है और जीव चित है, लेकिन उनका उद्गम भगवान है, जिनमें पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। इस दृश्य पदार्थ तथा आत्मा से युक्त यह दृश्य जगत भगवान से भिन्न नहीं है। इदम ही विश्वम भगवान इवेतर, यह दृश्य जगत भी भगवान है, यद्यपि यह उनसे भिन्न प्रतीत होता है। यह विश्व मेरे अव्यक्त रूप से व्याप्त है, सारे जीव मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। अतः यद्यपि कोई यह कह सकता है कि भगवान इस दृश्य जगत से भिन्न है, किंतु वास्तव में वे भिन्न नहीं हैं। भगवान कहते हैं, माया ततम इदम सर्वम, मैं अपने निराकार रूप में विश्व भर में फैला हुआ हूँ, अतएव यह विश्व उनसे भिन्न नहीं है। अंतर केवल नामों का है। उदाहरणार्थ, चाहे हम सोने के कुंडल की, कंगन की या हार की बात करें, अंततो गत्वा वे सभी सोना हैं। उसी प्रकार पदार्थ तथा आत्मा के सभी विविध स्वरूप भगवान में अंततः एक ही हैं। एकम एवाद्वितीयम ब्रह्म, यह वैदिक उक्ति है। एकत्व का कारण यह है कि सभी वस्तुएं पर ब्रह्म से उद्भूत हैं। पहले दिए गए उदाहरण के अनुसार सोने की कुंडल तथा सोने की खान में कोई अंतर नहीं है, लेकिन वैशेषिक चिंतक अपनी मायावादी विचारधारा के कारण अंतर उत्पन्न करते हैं। वे कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, परम सत्य वास्तविक है और यह दृश्य जगत मिथ्या है। किंतु जगत को मिथ्या क्यों माना जाए? जगत तो ब्रह्म का तेज है, अतएव जगत भी सत्य है। अतएव वैष्णव जन जगत को मिथ्या नहीं मानते, वे परमेश्वर से संबंधित होने के कारण हर वस्तु को सत्य मानते हैं। वस्तुएं भगवान के लिए स्वीकार की जानी चाहिए, न कि निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए। यदि कोई अनासक्त भाव से तथा कृष्ण से संबंधित होने के कारण कोई वस्तु स्वीकार करता है तो उसका त्याग युक्तम वैराग्यम कहलाता है। भगवान की सेवा करने में जो भी अनुकूल हो उसे स्वीकार करना चाहिए, उसे भौतिक वस्तु समझकर ठुकराना नहीं चाहिए। जगत को मिथ्या समझकर त्यागना नहीं चाहिए। यह जगत सत्य है और सत्य की अनुभूति तब होती है जब प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगा दिया जाता है। यदि हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी फूल को स्वीकार करते हैं तो वह भौतिक होता है, किंतु जब भक्त उस फूल को भगवान को चढ़ाता है तो वह आध्यात्मिक हो जाता है। अपने लिए लिया गया और पकाया गया भोजन भौतिक है, किंतु भगवान के लिए पकाया गया भोजन आध्यात्मिक प्रसाद है, वह अनुभूति का प्रश्न है। वास्तव में हर वस्तु के देने वाले भगवान ही हैं, अतएव हर वस्तु आध्यात्मिक है, किंतु जो लोग वास्तविक ज्ञान में बढ़े चढ़े नहीं हैं वे प्रकृति के तीन गुणों की पारस्परिक क्रिया के कारण वस्तु वस्तु में भेद मानते हैं। इस प्रसंग में शिलाजीव और स्वामी कहते हैं कि यद्यपि सूर्य ही एकमात्र प्रकाश है, किंतु सात रंगों में दिखने वाला प्रकाश और अंधकार जो सूर्य का अभाव है वे दोनों सूर्य से भिन्न नहीं है, क्योंकि सूर्य के अस्तित्व के बिना ऐसा अंतर रह नहीं सकता। भले ही विभिन्न दशाओं के कारण उनके विविध नाम हो, किंतु वे सब सूर्य हैं। जिस प्रकार अग्नि का प्रकाश अग्नि के एक स्थान पर रहते हुए चारों ओर फैलता है, उसी प्रकार परब्रह्म की शक्तियाँ इस सारे ब्रह्मांड में फैली हुई हैं। भौतिक दृष्टि से हम सूर्य प्रकाश को विभिन्न नामों तथा कार्यों के अनुसार फैलते अनुभव कर सकते हैं, किंतु अंततः सूर्य एक है। इसी प्रकार सर्वम खलविदम ब्रह्म प्रत्येक वस्तु पर ब्रह्म का विस्तार है, अतएव पर ब्रह्म सर्वस्व हैं और वे भेद रहित हैं। भगवान से पृथक किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है।
श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की
जय। अभी 1:30 बजा नहीं है, ये बज गया, आधा घंटा भी और है। गौतम प्रभु अभी प्रसाद नहीं देने वाले हैं, आप जल्दी क्लास खत्म कर लोगे तो